ओम शांति। इस भट्टी का लास्ट सत्र, बहुत लोगों के मन में प्रश्न थे तो रिक्वेस्ट आया था कि प्रश्न उत्तर का सेशन जरूर हो, इसीलिए ये सेशन अभी रखा जा रहा है। अगर किसी को भी कोई प्रश्न है ज्ञान के संबंधित, कोई ऐसी बात, तो यहां सामने माइक रखा गया है, आकर के पूछ सकते हैं। सब संतुष्ट है या प्रश्न है अभी तक है? संतुष्ट हो गए हैं बाबा, लेकिन ये भी मुरली में परसों कहा था शायद ना, अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुद के अंदर क्लैरिटी होगी तो दूसरों को समझाने के लिए वो स्पष्टता मिल जाती है।
अमृत वेले में अथवा अनुमा शाम योग करते वक्त हम बाबा के महावाक्य पढ़ के उसके अनुसार हम योग करेंगे तो योग में गिना जाएगा कि नहीं जाएगा?
हाँ, योग में गिना जाएगा ना, क्यों नहीं गिना जाएगा?
नहीं, कोई कहते हैं सिर्फ योग करना है, पढ़ना कुछ नहीं है, कुछ
नहीं, पढ़ करके बैठेंगे तो फिर ज्ञान बुद्धि में होगा तो एकाग्रता रहेगी। अगर हम योग में बैठे हैं लेकिन कोई भी ऐसे श्रेष्ठ संकल्प चल ही नहीं रहे बुद्धि में, मन में, तो फिर योग नहीं लगेगा ना। तो अगर कोई भी ऐसे खुराक, माना मुरली पढ़ करके कोई ऐसे, फिर बुद्धि को खुराक मिल जाता है मुरली पढ़ने से।
3 बजे उठते हैं सुबह, 5 बजे तक करते हैं, 1 घंटा पढ़ना, 1 घंटा योग करना, वो भी गिना जाएगा?
हाँ, गिना तो नहीं जाएगा लेकिन पुरुषार्थ में तो गिना जाएगा। योग में भले ना गिने लेकिन फिर पुरुषार्थ में तो गिना जाएगा।
और एक दूसरा प्रश्न है, हम घर में काम करते, घर के काम करते रहते, कमेंट्री सुनते या क्लासेस कोई भी मुरली सीनियर्स भाई बहन का क्लास सुनते हैं, तो वो पुरुषार्थ में आएगा 8 आवर्स में या नहीं?
8 आवर्स योग में तो नहीं आएगा क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उसमें बाबा को याद कर रहे हैं तो फिर योग में गिना जाएगा। लेकिन केवल मनन चिंतन चल रहा है या फिर अच्छा लग रहा है बातें, तो वो फिर
टाइम सफल हो,
सफल तो हो जाता है क्योंकि व्यर्थ संकल्प नहीं चल रहा है उसमें। तो ज्ञान के मनन चिंतन चल रहा है, ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, तो कुछ न कुछ अच्छी बातें बुद्धि में जा रहा है, तो पुरुषार्थ में तो गिना जाएगा।
अच्छा,
जरूर गिना जाएगा।
थैंक यू दीदी।
कहीं व्यक्त बातों से हम मुक्त हो जाते हैं ना उसमें, इसलिए। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? संकोच नहीं करेंगे, कोई आगे आकर के पूछने के लिए तो वो संकोच करते होंगे। तो ऐसा किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, सोचेंगे कि ये पता नहीं मैं पूछूं तो लोगों को क्या लगेगा, ये नहीं सोचना है। अगर आपको आकर के बोलने में दिक्कत होती है, आप लिख करके भी दे सकते हैं। लिख करके देने में आपको कंफर्टेबल लगता है तो लिख करके यहाँ भाई को देंगे तो भी हो सकता है।
ओम शांति। ज्ञान मार्ग में कहते हैं मन मना भव मध्यजी भव, और राजयोग को बुद्धि योग कहते हैं, तो दोनों का थोड़ा सा अंतर।
मन मना भव और
बुद्धि योग कहते हैं राजयोग।
मन का भी योग है, बुद्धि का भी योग है राजयोग। राजयोग वैसे अष्टांग योग में गिना जाता है, इसमें भक्ति योग भी है, हठ योग भी है, समत्व योग भी है, सब योग है इसमें।
लेकिन मन के द्वारा कर रहे हैं, बुद्धि के द्वारा कर रहे हैं, इसका अंतर कैसे समझे?
दोनों से करना है, मन और बुद्धि दोनों से करना है। एक्चुअली जब योग करते हैं हम तीन चीजों को यूज करते हैं। एक है मन, मन से हम श्रेष्ठ विचारों को उत्पन्न करते हैं, है ना, श्रेष्ठ विचार करते हैं मन से। और बुद्धि का कार्य क्या है योग में, कोई बता सकता है?
विजन क्रिएट करना। विजन क्रिएट करना,
हाँ, बुद्धि से हम विजन क्रिएट करते हैं, है ना। तो विजन जब क्रिएट करते हैं तो वो स्पष्ट रूप से देखते हैं, इसीलिए आंख कहते हैं ना। तीसरे आंख कौन सी है हमारा, तीसरे आंख कौन सी है? बाबा कहते हैं कि मैं आकर के तीसरा आंख देता हूं, तीसरा आंख खोल देता हूं। तीसरा आंख कौन सा खोलते? बुद्धि के पट को खोल देते बाबा, है ना। तो तीसरे बुद्धि को आंख कहा जाता है, तीसरा आंख कहा जाता है। उससे हम विजुलाइजेशन करते हैं, मतलब देखते, चीजों को देख सकते, बुद्धि से हम देख सकते हैं। तो योग करते समय स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य बैठी हूं, तो क्या इन आंखों को खुला रख करके मैं अपने आप को, आत्मा को भ्रुकुटी के मध्य में देख पा रही हूं? आप अभ्यास करें, देखें, आंख खुला रखें, आत्मा को भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा के रूप में देखें। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो रहा है माताएं, हो रही है? हाँ, कोई हां कह रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, हो रहा है हाँ? तो देख सकते हैं ना, तो बुद्धि के आंख कितना क्लियरली देख सकते हैं, उतना क्लियरली जब देखेंगे, जब हम कहेंगे कि सूक्ष्म वतन में जाइए और वहां सामने देखो बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में, ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में शिव बाबा देख पा रहे हैं? सूक्ष्म वतन में देख पा रहे हैं बाबा को? तो जितना क्लियरली हम देख पाते हैं उतना हमारी योग शक्तिशाली होगा। जैसे फिल्म देखते हैं, हर चीज स्पष्ट नजर आता है, हर कलर स्पष्ट नजर आता है जब फिल्म देखते हैं, ऐसे ही जब हम योग करते हैं हर चीज बुद्धि से स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, तब हमारा योग शक्तिशाली होगा। और तीसरी बात जो हम योग में यूज करते हैं वो है अपनी भावनाएं, फीलिंग्स। फीलिंग्स के बिना योग शक्तिशाली नहीं हो सकता। तो इसीलिए तीनों ही चीजों को जब हम यूज करते हैं, श्रेष्ठ चिंतन, स्पष्ट विजुलाइजेशन और हमारे बहुत ही गहरे फीलिंग्स, जब ये तीनों होगा तब हमारे योग शक्तिशाली होगा। ठीक है।
और चार्ट रखने के लिए बाबा कहते हैं, तो चार्ट रखने का जो सूक्ष्मता है या परसेंटेज है वो निकालना मेरे लिए तो अभी तक आसान नहीं हुआ है।
हर एक के लिए आसान नहीं है। हम सोचते हैं मैं 100% परफेक्ट हूँ, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के अनुसार मेरे 0% है ना। तो इसीलिए यथाशक्ति जो मुझे हमको लगता है उतना हम कर सकते हैं। एक्यूरेट तो नहीं हो पाएगा, एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, लेकिन रखना नहीं छोड़ना है। तो वृद्धि को हम देख सकते हैं, कल से आज बेहतर है हम वो देख सकते हैं, है ना।
और एक बात है, जैसे कोई गलती होती है या कुछ भी, हमारा कर्म इंद्रियों के द्वारा कारोबार चलता है, मनोव्यापार चलता है, तो रात को पोता मिल देना है, लेकिन जब का तब दे देवे, जब का तब सॉरी कह देवे, क्योंकि पूरा दिन कैरी ऑन करना कोई जरूरी नहीं है।
right,
रात को फिर रिवाइज करने की जरूरत है क्या?
जरूरत नहीं है।
थैंक यू।
जरूरत है, अगर आपके मन और चित्त से निकल गया है वो बात, तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है।
थैंक यू।
और वहाँ खाता वहाँ ही क्लोज कर रहे हो,
हाँ।
दोबारा खोलने की क्या जरूरत है, है ना?
थैंक यू।
ओम शांति दीजिए। दीजिए, एक माता का प्रश्न था कि बाबा से प्यार तो है, मुरली भी अच्छी लगती है, लेकिन जब भी योग करने बैठते हैं तो नींद आ जाती है।
जैसे बाबा आज कहा ना कि ब्रह्मा बाबा से प्यार, मना ब्राह्मण कल्चर से प्यार है ना, तो ऐसे बाबा से प्यार है, मना योग से भी प्यार होना चाहिए ना। योग लग ही नहीं रहा है, योग में बैठते ही योग नींद आ रहा है, तो फिर बाबा से प्यार कैसे सिद्ध होगा?
प्यार बहुत है, प्यार बहुत है,
प्यार बहुत है, लेकिन कनेक्शन लग ही नहीं रहा है,
कनेक्शन नहीं लगा
तो फिर प्यार नहीं कह सकते ना। केवल भाव, इसको कहते हैं भावना में बह जाना। केवल भावना है। एक मुरली में, अव्यक्त मुरली में रिसेंटली मुझे लगता है कुछ दिन पहले संडे की अव्यक्त मुरली में बाबा ने ये कहा था, एक होता है भावना और दूसरे होता है ज्ञान युक्त भावना, है ना। अगर ज्ञान युक्त भावना है तो फिर वो नींद नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है योग लगाने से मुझे प्राप्ति क्या है। तो इसीलिए भावना में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, समझ होना।
किस बात पर अटेंशन खिंचवाना चाहेंगे?
क्योंकि योग के बिना हमारे पाप भस्म नहीं होते हैं, तो इसीलिए योग का महत्व उसको समझना होगा। केवल प्यार रखने से हमारे पाप भस्म नहीं होंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान के प्रति बहुत प्यार है, लेकिन फिर यथार्थ ज्ञान से, ज्ञान के आधार से मैं योग लगा रही हूं, उसी से हमारे पाप भस्म होंगे ना, नहीं हो सकता नहीं। तो इसीलिए इंटरेस्ट जागृत करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसकी बेनिफिट क्या है, योग करने से लाभ क्या है उसको पता ही नहीं। हाँ, प्यार है, प्यार है, प्यार है, लेकिन फिर क्या लाभ होगा योग करके उसका तो पता है ही नहीं। आपकी आवाज क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, अगर बोलना है तो आगे आकर के बोलेंगे, ठीक है? अगर बोलना है तो आगे आकर के बोलिए, ठीक है?
एक और छोटा सा प्रश्न किसी का, तो कहते हैं कि जैसे बाबा को रोज चाट देते हैं लेकिन रोज ही मिस्टेक होती है, तो ऐसा करते करते फिर मन करता है कि चाट ना ही लिखे।
नहीं, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। भले रोज मिस्टेक हो रहा है, लेकिन रोज ध्यान अटेंशन जा रहा है तो कभी ना कभी कुछ परसेंटेज में परिवर्तन तो आएगा ही। अगर अटेंशन बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो परिवर्तन बिल्कुल ही छूट जाएगा। इसलिए भले ही हताश निराश नहीं होना। बहुत सारे भाई बहन, इसलिए बाबा आज बोला ना कि बहुत मन में विकल्प आते हैं तो फिर निराश हो जाते हैं, तो भक्ति मार्ग अच्छा था इससे, तो चलो वहीं चले जाएंगे। क्यों? यहाँ सूक्ष्मता से हम चेकिंग करते हैं और चेंज करते हैं, क्योंकि मंजिल भी बहुत भारी है। जब मंजिल भारी है तो पुरुषार्थ भी उतने सूक्ष्म, इतना डीपली हमें पुरुषार्थ करना होगा। तो इसलिए कोई बात नहीं, अगर मिस्टेक हो रहा है होने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर ध्यान तो लगा के रखना है कि नहीं, ये मिस्टेक मेरा रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट हो रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सुधराव तो आ भी रहा है ना, है ना?
शुक्रिया।
तो इसीलिए, लेकिन बाबा को, बाबा के मुरली सुनने नहीं छोड़ना है। बाबा ने आज क्या बोला, रोज बाबा की मुरली सुनने से तूफान कम आएंगे। भले तूफान आ रहे हैं, लेकिन रोज पुरुषार्थ करे, रोज मुरली सुने, रोज योग लगाए, तो धीरे 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 वो परिवर्तन होगा। वो धीरे क्यों हो रहा है परिवर्तन? क्योंकि 63 जन्मों का बोझा है ना, तो बोझा भी बहुत भारी है, बहुत जल्दी पूरा खत्म नहीं होने वाला है, बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगर बहुत सालों से मेरी बीमारी है, अगर 10-15 साल से मेरी बीमारी है, अगर आज अच्छा डॉक्टर मिला है, वो आज दवाई दे रहा है, लेकिन उस दवाई से मैं एक्सपेक्ट करूं आज ही मेरी बीमारी खत्म हो जाए, ये नहीं हो सकता। रोज मुझे वो कैप्सूल लेना पड़ेगा, रोज मुझे वो मेडिसिन लेना पड़ेगा, तब जाकर के धीरे 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 इस शरीर में सुधराव आएगा ना। अगर सर्जन मेडिसिन दे रहा है लेकिन मैं मेडिसिन ले नहीं रही, रखी हूं ऐसे ही। रोज सर्जन सुबह मुरली क्लास में कैप्सूल तो देते हैं रोज, मैं सुन करके एक कान में सुन करके दूसरे कान से निकाल ही रही हूं, लेकिन फिर उसको धारण नहीं कर रही हूं, तो फिर परिवर्तन नहीं आएगा। वो कैप्सूल लेना पड़ेगा ना, मेडिसिन लेना पड़ेगा, तब जाकर के परिवर्तन आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन निराश नहीं होना है, निराश नहीं।
थैंक यू दीजिए।
हाँ जी भाई जी, उनको आपको पूछना है, एक मिनट, कोई बात नहीं, बैठे बैठे।
ओम शांति। मेरा बाबा मुरली में बोल रहा है, कभी कभी बोलता है मनमना भव, कभी कभी बोलता है मध्याजी भव, बट आई हैव कंफ्यूज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनमना भव एंड मध्याजी भव?
दोनों बोलते हैं बाबा, मनमना भव और मध्याजी भव, दोनों बोलते हैं ना। मनमना भव माना मन मेरे में लगाओ, बाबा बाबा को याद करना, निराकार बाबा को याद करना, मध्याजी भव माना अपने लक्ष्य को याद करना, विष्णु रूप है ना, हमारा लक्ष्य क्या है, देवी देवता बनना है। मध्याजी भव माना मध्य में को क्या होने वाला है, हम आदि में हम परम धाम में थे, फिर मध्य में हम सत्युग में आ जाते हैं ना, तो मध्याजी भव माना हमारा लक्ष्य, बाबा को भी याद करना है और लक्ष्य को भी याद करना है, हम क्या बन रहे हैं।
ओम शांति जी। दीदी जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई भी परिस्थिति आए या मन में हलचल हो तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है, तो उसमें हम जानते तो हैं, ज्ञान तो है कि सेकंड में बाबा कहते फुल स्टॉप लगाओ, स्वस्थिति में स्थित हो जाओ, लेकिन वो लगती नहीं है जल्दी, तो उसके लिए क्या विधि है?
फुल स्टॉप लगाने के लिए ब्रेक भी पावरफुल होना चाहिए, ब्रेक पावरफुल नहीं होगा तो फुल स्टॉप नहीं लगेगा, है ना। गाड़ी में ब्रेक जितना पावरफुल है उतना जल्दी ब्रेक लग जाएगा,
कभी बहुत हलचल होती है,
हलचल होती है तो फिर ब्रेक नहीं लगता, फुल स्टॉप नहीं लगता है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है, अश्रीपन का अभ्यास। जितना हम अश्रीपन का अभ्यास, डिटैचमेंट का अभ्यास जितना हम करेंगे उतना जल्दी फुल स्टॉप लगेगा। कभी कभी अब मैंने उसमें अंतर आता जाएगा, ऐसा नहीं कि मैंने अभी पुरुषार्थ किया ही नहीं है, अभी नए नए बीके बनी हूं, लेकिन मैं सोचूं अभी फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, ये नहीं होगा। पहले शायद एक बात को लेकर के मैं 3 मास तक उसको संकल्प चलाती थी, बहुत संकल्प चलता था, एक बात कुछ घटनाएं घटी तो फिर मैं 3 मास 4 मास 6 मास तक उसके बारे में सोचती थी, लेकिन धीरे 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 उसका ड्यूरेशन कम होता जाएगा। मैं पहले 3 मास तक सोचती थी, पहले फिर 2 मास तक, फिर 1 मास तक, फिर धीरे 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 वो कम, वो ड्यूरेशन कम होता जाएगा, तुरंत वहां फुल स्टॉप लगे उसके लिए पुरुषार्थ। धीरे धीरे जितना हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता जाएगा उतना जल्दी वो ब्रेक पावरफुल होता जाएगा, शक्तिशाली होता जाएगा।
ठीक है दीदी,
इसके लिए न्यारापन का अभ्यास, अश्रीपन का अभ्यास।
दीदी एक और है कि जैसे सिटिंग नहीं हो पाती है दिन में, अमृत वेला और नुमा शाम तो होता है लेकिन दिन में सिटिंग नहीं हो पाती है, लेकिन बुद्धि का योग निरंतर परम धाम में अगर लगता है और अगर हम गाने सुन रहे हैं या क्लासेस भी सुन रहे हैं, लेकिन बुद्धि योग अगर बाबा के साथ है तो वो किस में काउंट होगा? वो
योग में, योग में काउंट होगा।
अच्छा दीदी,
योग में काउंट होगा अगर सुबह अमृत वेला और निर्मल शाम का योग बैठ के भी कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है, है ना। अगर सुबह एक घंटा, शाम को एक घंटा आप बैठ करके योग कर पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है।
थैंक यू जी,
बहुत बड़ी बात।
एक प्रश्न और था, जैसे चार्ट लिखते तो है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव हो, तो वो हम कुछ एक पॉइंट्स लेते हैं तो उसी पे पुरुषार्थ करते हैं, तो वो प्रोग्रेसिव नहीं हो पाता है, तो उसके लिए
नहीं, वो उसमें नयापन लाने की जरूरत है। प्रोग्रेसिव तो रहेगा ही, क्योंकि हर रोज हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो प्रोग्रेस तो रहेगा ही ना, लेकिन अलग अलग चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई बार उमंग उत्साह कम हो जाता है, चलते 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 थोड़ा बहुत साधारणता में आ जाते हैं, कभी कभी जबरदस्ती कर रहे होते हैं, कभी कभी मूड नहीं होता है करने के लिए, लेकिन फिर भी हम करते कर जा रहे हैं। जहां नयापन है, नवीनता है, वहां वो उमंग उत्साह बना रहता है। और नवीनता कहाँ से आएगा? ज्ञान से। ज्ञान के अलग अलग बातों को, ज्ञान के अलग अलग पॉइंट्स को लेकर के उसकी गहराई में मनन चिंतन करना शुरू करते हैं, उसको अनुभव करना शुरू करते हैं, तो फिर वो नयापन रहेगा। क्योंकि ज्ञान तो सागर है, वो छोटी बात नहीं, ज्ञान तो अथाह है। अगर देखे अव्यक्त मुरली को भी खोल के देखे, 1969 से लेकर के 2018 तक कि अव्यक्त मुरलियां कितनी सारी है, है ना, बहुत ज्ञान तो अथाह है ना। तो उसकी एक एक चीज को लेकर के गहराई में जाएंगे, उसमें नवीनता आएगी और फिर प्रोग्रेसिव होगा पुरुषार्थ।
और दीदी एक और है कि जैसे बाबा कहते हैं ना, सुबह सुबह मन का टाइम टेबल बनाओ पूरे दिन के लिए, तो उसके लिए वो चार धाम की यात्रा या पांच रूप का अभ्यास या और क्या कैसे बनाएं, उसको बताएं जरा।
अलग अलग रूप से कर सकते हैं। अगर कई बार मैं ये करती थी कि मुरली के अलग अलग पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स ले लिया, तो फिर हर घंटे में एक एक पॉइंट को मुझे वो अनुभव करना है, केवल रिपीट नहीं करना है, उसको महसूस करना है, अनुभव करना है, वो भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अलग अलग संबंधों को लेकर के आप कर सकते हैं,
बाबा के साथ
अलग अलग संबंधों को लेकर के कर सकते हैं, अलग अलग शक्तियों को लेकर के कर सकते हैं। अष्ट शक्तियां हैं हमारी और 7 गुण हैं आत्मा के, तो ऐसे अलग अलग रीति से आप कर सकते हैं।
थैंक यू।
सवाल है, अफेक्टिव सहकार जो है, कैसे अफेक्टिव सहकार सेवा कैसे की जाए?
सकाश की सेवा,
अफेक्टिव सहकार सेवा कैसे की जाए?
इफेक्टिव सकाश की सेवा,
अफेक्टिव सकाश सेवा कैसे की जाए? और दूसरा, क्या वो पर्टिकुलर किसी सोल के लिए की जाए या ओवरऑल की जाए? इसी का आगे सवाल ये है, हमें कैसे पता चले कि ये अफेक्ट भी कर रहे हैं या नहीं?
हाँ, यह आप इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं और कलेक्टिव सभी को भी, पूरे संसार को देना हो या पर्टिकुलर एक देश को देना है, एक कम्युनिटी को देना है, वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल को जब आप देंगे ना, तो फिर उसमें थोड़ा सा अटेंशन देने की बात है, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि हिसाब किताब भी बन सकता है जब इंडिविजुअल को देंगे, तो हिसाब किताब न बने लेकिन हिसाब किताब और चुकतु हो, तो उसके लिए हमें उस आत्मा को सूक्ष्म वतन में उसको विजुलाइज करना है और उस बाबा से मैं शक्ति लेकर के उस आत्मा को दे रही हूँ, वो विजुलाइज करना है, उस रीति से देना है। लेकिन देह भान में रहते हुए अगर हम देंगे ना, तो फिर एक तो पहुंचता नहीं है, देह भान एक इंसुलेशन हो जाता है, शक्ति का संचार नहीं होगा। शक्तियों का संचार तभी होगा जब आप आत्मिक स्थिति में होंगे, है ना। तो इसीलिए वो बहुत जरूरी है, सूक्ष्म वतन में विजुलाइज करके उस आत्मा को सकाश देना, इंडिविजुअल अगर देते हैं तो, और कलेक्टिवली देते हैं तो बाबा यहां भी रह करके बाबा से शक्ति लेकर के पूरा संसार को दे रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और तीसरी बात आपने जो पूछा कि ये कैसे पता चलेगा सामने वाले व्यक्ति को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वो बहुत सूक्ष्म रूप से पहुंचेगा जरूर, लेकिन इमीडिएटली पता नहीं चलता। जैसे सूक्ष्म में मेडिसिन काम कर रहा है, अंदर ही अंदर मेडिसिन काम कर रहा है, लेकिन फिर ऊपर से तो पता नहीं चलेगा ना कि वो कैसे हो रहा है। तो इसीलिए पहुंचेगा जरूर वो, लेकिन फिर इमीडिएटली हमें पता नहीं चलेगा, धीरे 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 बाद में लगातार कुछ दिनों तक करने के बाद पता चलेगा, उसके आपको महसूस होगा कि हाँ सचमुच ये मेरा सकाश उन तक पहुंचा है। हाँ, थक भी जा सकता है, निराश भी हो सकता है, लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि आप रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचो, आप करते चलो। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए ना, फिर लोग थक जाते, अरे इतना किया फिर भी नहीं हो रहा है, इतना कुछ पुरुषार्थ के, इतना कुछ, तो रिजल्ट के ऊपर ज्यादा हमारा ध्यान रहेगा ना तो तंग आ जाता है व्यक्ति। जैसे ना जब 1970s में विनाश की बात निकली थी, 1976 में विनाश हो जाएगा, जल्दी आ जाओ, जल्दी ज्ञान लो, लेकिन आया है, ज्ञान लिया, विनाश हुआ ही नहीं। फिर लोग थक गए कि विनाश नहीं हुआ तो चलो वापस दुनिया में चले जाते हैं। फिर सोचा कि 2000 में विनाश हो जाएगा, भागो 2000 तक, तो फिर 2000 में भी नहीं हुआ। फिर कुछ लोगों ने सोचा कि 2012 में होगा विनाश, 2012 भी चला गया, 2022 जा गया। फिर अगर हम विनाश को देख करके ज्ञान में आए ना, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड, मैं कहने का भावार्थ ये है, ये होगा इसीलिए ये करना है, अगर रिजल्ट ओरिएंटेड होकर के हमें ये करना है तो बहुत जल्दी हम अपसेट हो जाते हैं। इसीलिए निरंतर हम करते चले, जब वो समय आएगा वो फलीभूत होगा। वो जो अगर अभी तक कच्चा है वो फल, वो समय पर पकेगा ना। तो अब मैं बार बार फल के तरफ देखूं, अभी क्यों नहीं पका, तो फिर बहुत हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इसीलिए हम पुरुषार्थ करते चले, सकाश देते चले, जब वो फल को फलीभूत होना है वो फलीभूत होगा जरूर। उसके बारे में बाबा ने स्पष्टता नहीं की, स्पष्ट ज्ञान नहीं किया। बाबा कहते हैं इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कि एडवांस पार्टी है, सत्युग का काम चल रहा है, वो ठीक है ना, तो वो काम चालू हो गया है, लेकिन हमें क्या फोकस करना है, किस बात पर फोकस करना है, खुद के पुरुषार्थ पर, मुझे संपन्न बनना है। तो वो तो सत्युग आएगा, जिन लोगों को, जिन आत्माओं को निमित्त बनाया बाबा ने, वो तो काम शुरू कर दिए हैं, लेकिन कौन आत्माएं एडवांस पार्टी में है कौन नहीं है, उन बातों पर जाने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। वेट एंड वॉच, क्योंकि आज मैं कुछ भी बोलूं उसके बारे में तो भविष्य किसने देखा, क्या होने वाला है, किसने सोचा कि दादियां सब चली जाएंगी, हमने सोचा कि दादियां भी रहेंगी, हम भी रहेंगे, सब साथ साथ जाएंगे, दादियों ने भी कब सोचा था कि ब्रह्मा बाबा चले जाएंगे, तो ये हो गया ना। तो इसीलिए 2036 में होगा, क्या होगा, वेट एंड वॉच, हो जाए तो अच्छी बात है हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं रहूं ना रहूं कौन सा गारंटी है ना, मेरा अंत कल ही आ सकता है ना, तो मेरा अंत कल ही आ सकता है, तो इसीलिए कोई गारंटी नहीं है कब आएगा। बाबा हमेशा कहते थे अगली दिवाली नहीं आएगी, है ना, तो ताकि बाबा क्यों ऐसे बोलते थे अगली दिवाली नहीं आएगी, क्योंकि पुरुषार्थ में वो स्पीड लाए, नहीं तो फिर बाबा उस समय बोलते कि नहीं 2036 तक तो रहेगा, संसार रहेगा, इतने सालों तक रहेगा, तो फिर सारे फिर बहुत ही लेजी हो जाएंगे ना। तो इसीलिए ऐसा पुरुषार्थ करना है कि अगली दिवाली आए कि नहीं आए किसको पता। कोरोना काल में अचानक कितने लोगों ने शरीर छोड़ा, जब सेकेंड वेव आया तो अचानक कितने लोगों ने शरीर छोड़ा, सोचा था इतने यंग लोग शरीर छोड़ेंगे, देखो अचानक सब कुछ होता है। हाँ जी
दीदी, ओम शांति। दीदी मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं घर में अकेली हूँ, तो ये जो बाबा 6:30 से 7:30 बजे का योग बताते हैं ना, ये मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि गांव वाले कोई आ जाता है बैठने, कोई कुछ होता है, कोई कभी गेस्ट आते आए होते तो उनको खाना भी बनाना होता है सब। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि जब सोए होते ना सारे, 2:30 से 5 बजे तक मैं योग करती हूँ,
सुबह
नहीं
शाम, दोपहर को, दोपहर को,
हाँ जी दोपहर को, मैं जब इधर उधर सब सोए या अपन बैठे उठते तब मैं योग कर लेती हूँ 2:30 से 5 या 3 से 5। तो ये ठीक है कि गलत? तो है गलत,
ठीक है ना, जब आपको समय मिलता है। हाँ। वो तो गलत तो है ही नहीं, उसका साइड इफेक्ट तो होता नहीं है मेडिसिन की तरह।
हाँ।
कभी भी रात को बाबा कहते बाथरूम में भी जब बैठे हो तभी भी आप मेरे को याद कर सकते हो।
बस मुझे होता है कि बाबा तो 6:30 से 7:30 बताते, पर मैं उस टाइम में नहीं कर पाती।
ठीक है, मिलता है 6:30 से 7:30 योग करना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थ में जब रहते हैं तो हर बार होता नहीं, हर रोज नहीं हो पाता है, तो इसीलिए कोई बात नहीं।
हाँ तो मैंने,
लेकिन अमृत वेला योग मिस ना।
हाँ योग तो अमृत वेला तो ठीक 3 से 5 हो जाता है, वो तो अपने हाथ का ही है ना, पर शाम का जो योग है वो मैं अपने हिसाब से ही करती हूँ।
आपने बोला राजयोग को अष्टांग योग कहा गया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं।
अष्टांग योग, राजयोग शिविर सुन लेंगे तो
अभी अभी सुनना चाहेंगे सब।
अच्छा, अष्टांग योग में 8 प्रकार के योग होते हैं और योगों का राजा, राजयोग को योगों का राजा कहते हैं, है ना। तो इसीलिए इसमें 7 प्रकार के योग हैं और 8वां योग है राजयोग। तो 7 प्रकार के योग है, मुझे जितना याद है अभी उतना मैं बताऊंगी, कभी छूट भी सकता है। एक है बुद्धि योग, दूसरा है भक्ति योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है संन्यास योग और 5वां है समत्व योग। समत्व माने बैलेंस, हर बात में बैलेंस चलता है। और हठ योग बहुत बोला मैंने, हाँ छठा है हठ योग और 7वां एक और छूट गया है, ज्ञान योग। हाँ ज्ञान योग, ये 7 योग हो गए। तो 7ों ही योगों का राजा 8वां वो है राजयोग, राजयोग अष्टांग योग इसलिए कहते हैं इसको। ओके अच्छा, आपको पूछना है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है 7:15 हो गया। कौन सी देवी ऑन है? वो रेणुका देवी।
हाँ जी हाँ जी।
हाँ
तो जैसे कि हम वहाँ 5-6 दिन साथ रहते हैं, तो वो घर बार छोड़ के औरतें वहाँ रहती हैं और देवदासियाँ होती हैं वहाँ पर बहुत सारी, बाकी जगह
देखो भक्ति मार्ग में बहुत सारी देवियाँ हैं।
हाँ जी हाँ जी।
और बहुत सारे प्रथाएं हैं।
हाँ जी
है ना।
हाँ जी।
तो उनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं
है, वो हमारी यादगार
जरूरत नहीं है, वो हमारी यादगार है।
हाँ जी हाँ जी।
किसकी यादगार कौन सा है वो पता नहीं है, है ना,
आपको पता होगा।
हाँ तो इसीलिए ठीक है, बाबा ने जो सार में उसका रहस्य जो बताया है तो उसको हमें धारण करना है।
हाँ जैसे हम रह रहे वैसे हमारी यादगार में रहती होगी। हाँ ना,
हाँ उसको हमें धारण करना है, जैसे हर देवी के पीछे एक शक्ति है, उन शक्तियों को हमें धारण करना है बस, है ना। भक्ति मार के उसके डिटेल में जाने की जरूरत
नहीं है, वो हमारी यादगार वही तो कह रहे हैं,
हमारी यादगार,
वो भी 6-7 दिन वहाँ मंदिर में जा रही है, उनका देवी में रहेंगी भी, उनको घर वाले जाएंगे मना के ले आएंगे, कुछ ऐसा ऐसा करते हो
जी। ठीक है, चलिए दो मिनट बाबा की याद।
सुनो, दो प्रश्न है माता जी ने दिया है कि मैं ज्ञान में नहीं हूँ, योग में बैठते समय व्यर्थ संकल्प चलते हैं, इससे बचने के लिए क्या पुरुषार्थ करें?
हाँ, व्यर्थ से बचने के लिए एक तो बाबा के मुरली कुछ ना कुछ पॉइंट लेकर के आप बैठे, कुछ पढ़े या एक पैराग्राफ बाबा के मुरली पढ़ करके फिर योग में बैठे। और योग में जब बैठते हैं तो लंबे काल के लिए लक्ष्य न लें, जैसे आधा घंटा आप बैठ रहे हैं, आधा घंटा मुझे ये अनुभव करना है वो नहीं सोचना है, हर पांच मिनट में आपका अपना लक्ष्य चेंज करना है। जब लक्ष्य चेंज करेंगे तो एकाग्रता बनी रहेगी। अगर एक ही लक्ष्य को लेकर के बैठेंगे, मैं आधा घंटा शांति स्वरूप का अनुभव करूंगी, तो फिर मन बोर हो जाएगा। तो इसलिए पांच पांच मिनट में आपको लक्ष्य चेंज करना है, तो तब जाकर के आपका जो व्यर्थ संकल्प है नहीं चलेगा, क्योंकि आप लक्ष्य दिया ही नहीं है तो मन को कहीं तो जाना है, तो व्यर्थ के तरफ चले जाएंगे। आपने उसको डायरेक्शन ही नहीं दिया, दिशा ही नहीं दी कि ये सोचो, तो उसको होमवर्क देना होता है कि आप इसके बारे में सोचो, इसको अनुभव करो। तो होमवर्क देंगे तो मन उसके बारे में सोचना शुरू करेगी, नहीं तो फिर होमवर्क नहीं देंगे तो मन कहीं ना कहीं भटक जाएगा, व्यर्थ सोच में लग जाएगी।
लास्ट क्वेश्चन है, राधे कृष्ण कहते हैं, राधे का नाम हम पहले लेते हैं परंतु नंबर वन तो कृष्ण है, फिर राधे का नाम पहले क्यों लेते हैं?
बाबा ने इस बात को मुरली में स्पष्ट किया है। बाबा ने हमेशा माताओं कन्याओं को आगे रखा है और बाबा के बड़प्पन है ये, तो इसीलिए राधे पहले है और कृष्ण बाद में है, लक्ष्मी पहले फिर नारायण है।